Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, मनीषा पंचक के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। जाग्र स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदो जृंभते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी इवाहं न च दृश्यवस्थितिदृढ प्रज्ञापीय शस्ति चे चांडालोस्तु सतु दिजोस्तु गुरुरे तेषामनीषा मम चांडालोस्तु सतु दिजोस्तु गुरुरे तेषामनीषा मम। भगवत भक्तजन, सद्गुरु एक श्रद्धा के पात्र है। आचार्य शंकर गुरु मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना अंत्य योनि को प्राप्त किया हो। जिनकी चेतना उस अद्वैत अनुभव में, अनुभूति में स्थिर है, जिन्होंने वो शक्ति को आविष्कार किया, साक्षात्कार किए, जो एक अद्वितीय चैतन्य शक्ति संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है, दृश्य जगत दृष्टा जगत में वही सत्ता विराजमान है, उसी सत्ता का ही संपूर्ण विलास यह संसार है, नाम रूपात्मक जगत है। केवल उतना ही नहीं, इस वेष्टि शरीर में जो भी शब्द स्पर्श रूप रस अनुभव करता, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय के द्वारा जो विषयों को अनुभव करने वाला, जिसकी उपस्थिति से यह संपूर्ण भोग्य भोग एवं भोक्ता विराजमान है, सत्तामान है, केवल जागृत में ही नहीं, वही चैतन्य शक्ति विशिष्ट स्वप्न अवस्था में भी विराजमान है, जागृत है। सभी इंद्रियों उपकरण सो जाने पर भी वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, वो जागृत अवस्था में ही है। जब स्वप्न अवस्था से साधक उस सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां जाकर के मन भी अपने कारण में लीन हो जाता है, वहां पर भी बाह्य दृष्टि से मनुष्य कुछ नहीं पता ऐसा अनुभव करने पर भी, कुछ नहीं पता इस बोध को जो जानता है, वो जो चित सत्ता है, वो जो चैतन्य सत्ता है, जिनकी चेतना मन बुद्धि अंतःकरण उस चैतन्य में प्रदीप्त है, वो चाहे क्यों हमारे चंडाल हो, अंत्यजोनी क्यों ना हो। आचार्य शंकर कह रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए भगवत भक्तजन इस संसार में आए। संसार में जब आए तब गर्भ उपनिषद को जब हम देखते हैं, बड़ा वेदना और प्रार्थना करते हैं ये जीव कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे और संसार में जाना नहीं है, इस संसार से इस बार के लिए हमें निष्कृति दे दो। क्या प्रार्थना आप करते हैं? गर्भमुनि ने उपनिषद को पढ़ने पर लगता कि यही प्रार्थना हमने किया। और भगवान से हाथ जोड़ करके उपनिषद के ऋषि उस जीव की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। वही मैं गिरगिराता रहा कि इस बार के लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे इस संसार में जाना नहीं है। परंतु गहना कर्मणों गति, कर्म के गति गहन है और उस कर्म के परवश होकर के आना पड़ा इस जीव को। आते समय यही जीव प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी कर्म के कारण आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, हे देव ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो तुम्हें कभी न भूलो। ये मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है नारायण, कि ऐसी चेतना दो कि कभी भी हम आपको ना विस्मृत हो ना भूले। परंतु वही जीव, वही मैं उस प्रसव की वेदना से सब भूल गए, सब भूल गए और उस अद्वितीय परमात्मा की ही व्यवस्था में आ गए, स्वकर्म से प्रेरित होकर के इस दृश्य जगत में आया। और इस जगत में आने के लिए बहुतों की कृपा, बहुतों की आशीर्वाद लेने पड़े। परंतु नारायण, आगमन के पूर्व में जो प्रार्थना हमने किया, ईश्वर से जो निवेदन किया कि कभी भी ना भूलू तुम्हें, वो प्रार्थना किसी प्रेरित से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, वो प्रार्थना हृदय की प्रार्थना है, व्याकुलता की, सत्यता की, जो हमने पूर्व पूर्व जन्मों में अनुभव किया, जो हमने संसार की सत्यता को जाना, जो हम सत्य और असत्य को विचार के द्वारा प्राप्त किया था, जानकर के उस अंतर्जामी हृदयेश्वर सर्वाधार उनसे प्रार्थना किया। परंतु संसार के ऐसे माया, ऐसे मोह हैं कि संसार में आते ही मैंने किया जो प्रार्थना, मैंने जो निवेदन किया कि कभी न भूलू, वही पहले भूले, उसी को पहले विस्मृत हुए। और इतनी दुर्गति, इस संसार में प्राप्त किया, अनिष्ट को अपनाया, निष्ठ को छोड़ा, अनिष्ट को ही प्राप्त किया और आज तक वही अनिष्ट को ही उठा रहना है। परंतु वो जगदीश्वर, जगदात्मा, हृदयेश्वर कभी कभी अपने अस्तित्व का प्रबोध कराते हैं कि मैं हूं और तुम्हारी ये प्रार्थना रही। परंतु विषयों की वासना से, भोगों की लिप्सा से, आकर्षण से उस अंतरात्मा की आवाज को, शब्द को हमने सुना नहीं और भोग में ही लिपट गए, लिप्त हो गए। परंतु ये जो चारों तरफ अंधकार है, यह जो अज्ञान है, यह जो मोह है, ये जो माया है, इससे जो जीव अपने को आबद्ध समझ रखा है, इस मोह अंधकार से, अज्ञान से कौन हटाने वाला है? वो तो हृदय में बैठे हैं, उन्हीं से तो हमने प्रार्थना किया था। परंतु आज हमें इस अज्ञान से कौन उठाने वाले हैं? भगवत भक्तजन, जिस दिन ऐसा प्रतीति हो, ऐसा लगे कि हमने भोगों को अपनाया सुख पाने के लिए, ऐश्वर्य, समृद्धि, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया, परंतु इतने प्राप्ति के बावजूद भी मन के एक सुनापन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक हाहाकार अभी भी है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं, वो जो मन के अंतस का जो भाव है, भोग ऐश्वर्य से भरा पूरा परिवार है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं अकेला हूं। भगवत भक्तजन, ये जो फीलिंग्स है अकेलापन का, ये बहुत जरूरी है अध्यात्म जीवन के लिए। उस सुनापन, उस एकाकित्व, उस अकेलापन का अनुभव जो करता है, वो फिर ढूंढता है कि इस अकेलापन को मैं कैसे मिटाऊं, और तब वो ऐसे एक अस्तित्व के पास जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो इस संसार के अंधकार को काट करके, दूर करके ज्ञानमय प्रदीप को वो प्रज्वलित कर दे। और वही है गुरु। इसलिए गुरु अनायास मिल जाता है तो उसके मूल्य को हम देना नहीं चाहते नारायण। गुरु अगर मिला है तो ईश्वर के अनुग्रह है। गुरु अगर प्राप्त कर लिया तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, और यही दृष्टि जो है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि जो आप हमारे सामने उपस्थित है, खड़े हैं, अंत वेशधारी सबसे निकृष्ट ज्योनि को ग्रहण करके आप हमारे पास उपस्थित हुए हैं, परंतु बाह्य दृष्टि से क्यों ना आप अत्यंत निकृष्ट हो, परंतु हे देव, आपके चेतना जो उस अद्वितीय चैतन्य में अनुभव है, जो एक अनुश्रुत परमात्मा शक्ति सर्वत्र विराजमान है, उस शक्ति में ही जिनकी बुद्धि और मन स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, चाहे वो चांडाल हो अथवा द्विज श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो मेरे गुरु है। इसलिए अंतिम चरण के द्वितीय तृतीय चरण में आचार्य अपने भाव को लिखते हैं, सैवाहम न च दृश्यवस्विति दृढ प्रज्ञापियास्ति चे। जिनकी प्रज्ञा, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि उसमें दृढ़ हो गया है, अर्थात जिन्होंने उस शक्ति को अथवा उस शक्ति में चित्त को टिका पाए, वो मेरे गुरु है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवत भक्तजन गुरु वो है, गुरु वे है जो इस संसार के अंधकार से, अज्ञान से हमें उस पार ले जा सकते हैं। कहां से आया कुछ भी पता नहीं है, मृत्यु के बाद कहां जाना है कुछ भी पता नहीं है, परंतु ऐसा जो एक अदृश्य अतीन्द्रिय यात्रा में आप निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, सोच करके घबराहट नहीं होती। अरे भाई, इस संसार में कहीं भी हम टूर में निकलते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो क्या क्या व्यवस्था हम अपनाते हैं? रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरा सर्च करके एकदम पक्का करके जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमें कोई तकलीफ ना हो, यहां तक व्यवस्था करते हैं कि उस स्टेशन पर पहुंचने पर भी अगर कोई हमें लेने आवे तो बड़ा निश्चिंत कि हां कोई आ करके खड़ा है। इतनी व्यवस्था निश्चय खुद आपने किया, फिर भी आप बेचैन रहते हैं, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, जब तक मिलते नहीं, जब तक वहां पहुंचते नहीं, जब तक उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं होती। परंतु कभी भी हमने ये कोशिश किया कि इस जीवन के, मृत्यु के बाद भी मुझे चलना है, इस जीवन में हमने जो भी किया, जो भी संग्रह किया, जो भी अपनाया, जिनको भी ग्रहण किया, वो सब हमारे साथी है, परंतु एक समय क्यों ना अत्यंत आपन, अपना क्यों ना हो, उसको छोड़कर के हमें जाना है। और इस मृत्यु के इस दीवार के बाद कौन है भाई? कभी भी हमने कोशिश नहीं किया कि बस इस शरीर को छोड़कर के, इस यात्रा को छोड़कर के आगे जो स्टेशन, जहां मेरा स्टेशन है, जिस जोली के लिए भी हमने टिकट बनाया है, वहां पर हमें कौन स्वागत करेगा? अरे जगत में जब घूमने जाते हैं, जिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, अगर कोई अपना व्यक्ति हो, कोई होटल वाला ही क्यों ना गाड़ी लेकर आया हो, तो बड़ा निश्चिंत होते हैं। परंतु मृत्यु के बाद जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए, उस जर्नी के लिए कौन हमें स्वागत करने वाला कौन है? जहां इस जीवन में, इस वर्तमान में, इस लोक में तो हमने सारा इकट्ठा किया, संग्रह किया, अपनाया लोगों को, तो ये लोग भी तो एक सीमा तक, फिर उसके बाद ऐसा हमने व्यवस्था किया, क्या कोई आए, कोई लेख देखे? जब संसार में व्यवस्था करके भी हम यात्रा में निकलते हैं, स्टेशन पहुंचने के पहले तक, स्टेशन में ट्रेन इन कर रहे तब तक मन में जो है एक बेचैन, एक टेंशन, क्या पता वो आया कि नहीं, क्या पता वो मिलेगा कि नहीं, क्या पता कहां होगा। परंतु कभी भी हम ये नहीं कोशिश करते कि इतने आयु गए, इतने स्टेशन हमने अतिक्रमण किया, अब हमारा डेस्टिनी पहुंचने वाला है नारायण। अभी तक हमें बेचैनी नहीं है कि हमें कोई वहां लेने के लिए आए, हमने कोई व्यवस्था नहीं किया कि हमारे साथ हमें स्वागत करने के लिए, हमें लेने के लिए कोई आए। वो जो बताने वाला है कि भाई देखो यही संसार ही सब कुछ नहीं है, वो जो निश्चय देने वाला है कि बस मृत्यु के बाद तुम्हें ये व्यक्ति स्वागत करने के लिए आने वाले हैं। जैसे ही हम उस स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन रुकती है, फिर भी एक बेचैन होकर के चारों तरफ देखते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं कि कोई आया, कोई मेरा नेम लिख करके खड़ा तो नहीं है, देखते हैं बेचैन होकर के। और जब मिल जाता है कि हाँ अमुक मेहतास फैमिलीज वेलकम टू, फिर कितना आनंद होता है कि हाँ बस मैं हूं अपने आप मैं हूं। परंतु ये जो मैं हूं, ये जो मिलन, कितना सुखद है। सारा टेंशन, सारा एंजाइटी, सारा दुश्चिंता खत्म। और उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, वो हमारे लगेज लेते हैं, हम निकल जाते हैं। परंतु इस जीवन के जो संधिक्षण है, जहां उतर करके मुझे और यात्रा करनी है, ये जो स्टेशन आने वाला है, वहां हमें कौन मिलेगा? कोई हमारे लिए है, हमने कुछ व्यवस्था किया, वो व्यवस्था अगर आप करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था में एकमात्र सद्गुरु देते हैं। गुरु वो बता देते हैं कि तुम इस जीवन के यात्रा से निकलो तो तुम इस जीवन में ऐसा कुछ कर्म करो जो तुम्हें उस स्टेशन पर मृत्यु के बाद कालांत में वो सामने आकर के खड़े रहेंगे। और व्यक्ति जब उस सद्गुरु के चरण में अर्पण कर लेते हैं, इस अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और गुरु जब वो ज्ञान देते हैं कि है कोई और उसको तुम पुकारो, उससे परिचय प्राप्त करो, वही तुम्हें लेने के लिए आएंगे, वही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, तब व्यक्ति निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा लेते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, बड़े निश्चिंत होकर के वो जाते हैं।